नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नॉटरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मार्को कास्तोरिना की पुस्तक मास्टरिंग ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग विद वल्कन एक तकनीकी परियोजना आधारित मार्गदर्शिका है, जिसका लक्ष्य आधुनिक रेंडरिंग इंजन को आधारभूत ढांचे से विकसित करना है। यह केवल वल्कन एपीआई के अलग अलग आदेशों की सूची नहीं देती, बल्कि इंजन के उन निर्णयों पर केंद्रित है जिनसे जटिल ग्राफिक्स प्रणाली व्यवस्थित, विस्तार योग्य और तेज बनती है। पुस्तक का दायरा रेंडरिंग फ्रेमवर्क की नींव से शुरू होकर पाइपलाइन लेआउट, संसाधन बाधाएं, जीपीयू संचालित रेंडरिंग, मेश शेडर और वास्तविक समय रे ट्रेसिंग जैसी उन्नत क्षमताओं तक जाता है। उपलब्ध परियोजना कोड वल्कन 1.2 और विंडोज या लिनक्स परिवेश के लिए बनाया गया है, इसलिए पाठक सिद्धांत को कार्यशील कार्यान्वयन के साथ जोड़ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उस डेवलपर को व्यावहारिक वास्तुशिल्प समझ देना है जो साधारण डेमो से आगे बढ़कर खेल, सिमुलेशन या दृश्य प्रभावों के लिए आधुनिक रेंडरर बनाना चाहता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, रेंडरिंग फ्रेमवर्क को चरणबद्ध तरीके से बनाना। पुस्तक का केंद्रीय ढांचा रेंडरिंग इंजन को एक ही बार में विशाल प्रणाली की तरह प्रस्तुत करने के बजाय उसे क्रमशः निर्मित करने का है। यह दृष्टि वल्कन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां संसाधन निर्माण, कमांड रिकॉर्डिंग, समन्वयन और प्रस्तुति जैसी जिम्मेदारियां प्रोग्रामर के नियंत्रण में रहती है। उच्च स्तरीय ग्राफिक्स एपीआई कई निर्णय स्वतः ले सकती है, पर वल्कन में स्पष्ट नियंत्रण प्रदर्शन और जटिलता दोनों बढ़ाता है, इसलिए फ्रेमवर्क की ठोस आधारशिला बाद के फीचरों को जोड़ने की शर्त बनती है। चरणबद्ध निर्माण का व्यावहारिक लाभ यह है कि हर नई परत का परिणाम और उसकी लागत अलग से समझी जा सकती है। पाठक केवल चित्र स्क्रीन पर लाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह देखता है कि इंजन के भीतर डेटा और कार्य किस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए। ऐसी संरचना में रेंडरिंग कोड को खेल के बाकी कोड से अलग रखने, संसाधनों के जीवन चक्र को नियंत्रित करने और नए प्रभाव जोड़ने की क्षमता विकसित होती है। पुस्तक की उपयोगिता इसी वास्तुशिल्प क्रम में है। यह बताती है कि आधुनिक रेंडरर केवल शेडर या ड्रॉकॉल का संग्रह नहीं, बल्कि परस्पर निर्भर प्रणालियों का सावधानी से बनाया गया ढांचा है। हालांकि इस सामग्री से लाभ पाने के लिए वल्कन की मूल शब्दावली और C++ आधारित प्रोग्रामिंग की पूर्व जानकारी उपयोगी रहती है। दूसरा, पाइपलाइन लेआउट और संसाधन बाइंडिंग का स्पष्ट नियंत्रण। वल्कन में पाइपलाइन लेआउट उस अनुबंध की तरह काम करता है जो शेड्रो और एप्लीकेशन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों के बीच संबंध तय करता है। इसमें यूनिफॉर्म डेटा, टेक्सचर, बफर और अन्य बाइंडिंग की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। पुस्तक इस उन्नत क्षेत्र को आधुनिक इंजन डिजाइन के संदर्भ में रखती है, क्योंकि संसाधन बाइंडिंग का अव्यवस्थित तरीका जल्दी ही रखरखाव और प्रदर्शन दोनों की समस्या बन सकता है। जब कई सामग्री, ऑब्जेक्ट और रेंडरिंग पास हो, तब प्रत्येक ड्रॉ के लिए अनावश्यक स्थिति परिवर्तन सीपीयू पर बोझ बढ़ा सकते हैं। सही पाइपलाइन लेआउट और संसाधन संगठन इस खर्च को सीमित करने में सहायता करते हैं। इस विषय का महत्व केवल वल्कन की औपचारिकताओं तक नहीं है। यह डेवलपर को यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि शेडर को वास्तव में कौन सा डेटा चाहिए, वह कितनी बार बदलता है और कौन सा डेटा अलग अलग ड्रॉ या फ्रेमों के बीच साझा हो सकता है। यही प्रश्न इंजन को लचीला बनाते हैं। पुस्तक का फ्रेमवर्क उन्मुख रुख उपयोगी है, क्योंकि वह संसाधन प्रबंधन को अलग अलग उदाहरणों की अस्थायी व्यवस्था मानने के बजाय दोहराए जाने योग्य प्रणाली के रूप में देखने को प्रेरित करता है। परिणामस्वरूप पाठक बड़े दृश्य और विविध सामग्री संभालने वाले रेंडरर के लिए अधिक अनुशासित डेटा प्रवाह की समझ विकसित कर सकता है। तीसरा, रिसोर्स बैरियर और समन्वयन से सही जीपीयू निष्पादन। वल्कन की शक्ति का एक कारण उसका स्पष्ट समन्वयन मॉडल है, और इसकी कठिनाई भी यही है। चित्र, बफर और अन्य जीपीयू संसाधन अलग अलग चरणों में लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि एक ऑपरेशन का परिणाम दूसरे ऑपरेशन को सही समय पर उपलब्ध ना कराया जाए, तो दृश्य त्रुटियां, अस्थिर व्यवहार या उपकरण पर निर्भर बग उत्पन्न हो सकते हैं। पुस्तक संसाधन बाधाओं को आधुनिक रेंडरिंग इंजन की आवश्यक व्यवस्था के रूप में शामिल करती है। इन बाधाओं का उद्देश्य केवल काम रोकना नहीं, बल्कि संसाधन की पूर्व अवस्था, अगली अवस्था और उनके बीच आवश्यक दृश्यता को स्पष्ट करना है। उदाहरण के लिए, किसी इमेज का उपयोग रेंडर लक्ष्य, फिर शेडर इनपुट और अंत में प्रस्तुति के लिए हो सकता है। हर परिवर्तन के साथ सही पहुंच और लेआउट का प्रबंधन जरूरी है। इंजन स्तर पर यह समस्या और कठिन होती है, क्योंकि अनेक पास और संसाधन एक ही फ्रेम में परस्पर जुड़े होते हैं। पुस्तक का महत्व इस बात में है कि वह ऐसे निम्न स्तरीय विवरण को प्रदर्शन से जोड़ती है। अत्यधिक सतर्क समन्वयन समानांतरता घटा सकता है, जबकि अपर्याप्त समन्वयन गलत परिणाम देता है। अतः लक्ष्य मनमाने अवरोध नहीं बल्कि निर्भरता के अनुरूप न्यूनतम और सही नियंत्रण है। यह विषय उन पाठकों के लिए निर्णायक है जो वल्कन में विश्वसनीय और अनुकूलित रेंडरिंग कार्य प्रवाह बनाना चाहते हैं। चौथा, जीपीयू संचालित रेंडरिंग द्वारा सीपीयू कार्यभार घटाना। पुस्तक जीपीयू संचालित रेंडरिंग को उन तकनीकों में रखती है जो आधुनिक रेंडरर को बड़े पैमाने के दृश्यों के लिए तैयार करती है। पारंपरिक व्यवस्था में सीपीयू दृश्य की वस्तुओं को छांटता है, ड्रॉ कॉल तैयार करता है और जीपीयू को लगातार काम सौंपता है। कम वस्तुओं वाले दृश्य में यह पर्याप्त हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक ऑब्जेक्ट सामग्री या दृश्यता जांच होने पर सीपीयू पक्ष बाधा बन सकता है। जीपीयू संचालित तरीका अधिक डेटा और निर्णयों को जीपीयू के निकट ले जाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य ऐसी दोहरावदार तैयारी को कम करना है जो जीपीयू की समानांतर क्षमता के सामने सीपीयू पर अनावश्यक भार डालती है। यह परिवर्तन अपने आप में जादुई प्रदर्शन लाभ नहीं देता। इसके लिए बफर आधारित डेटा व्यवस्था, सही संसाधन पहुंच, कमांड निर्माण की योजना और डीपगिंग के अलग तरीके चाहिए। पुस्तक की प्रासंगिकता यह है कि इसे केवल एक नवीन फीचर की तरह नहीं बल्कि इंजन कार्यप्रवाह के विकास के रूप में देखा जाता है। जब दृश्य जटिल होता है तब डेटा को जीपीयू अनुकूल रूप में व्यवस्थित करना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना रेंडरिंग एल्गोरिदम। पाठक को यह बोध मिलता है कि प्रदर्शन सुधार केवल तेज शेडर लिखने से नहीं आता। कई बार असली सीमा सीपीयू और जीपीयू के बीच काम बांटने, आदेश भेजने और संसाधन तैयार करने के तरीके में होती है। अंत में मेष शेडर और वास्तविक समय रे ट्रेसिंग का इंजन में स्थान। मेष शेडर और वास्तविक समय रे ट्रेसिंग पुस्तक के उन्नत समकालीन हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेष शेडर पारंपरिक वर्टेक्स और ज्योमेट्री प्रसंस्करण के विकल्प के रूप में अधिक लचीला ज्योमेट्री कार्यप्रवाह दे सकते हैं। इनका उपयोग तभी सार्थक होता है जब इंजन का डेटा संगठन और लक्ष्य हार्डवेयर समर्थन उनके अनुकूल हो। इसलिए इन्हें सामान्य समाधान मानने के बजाय रेंडरर की वास्तुकला में सोच समझकर जोड़ी जाने वाली क्षमता के रूप में देखना चाहिए। वास्तविक समय रे ट्रेसिंग प्रकाश, प्रतिबिंब, छाया और दृश्यता से जुड़े प्रभावों के लिए अलग प्रकार की गणना उपलब्ध कराती है। फिर भी यह पारंपरिक रेस्टराइजेशन को हर स्थिति में प्रतिस्थापित करने का दावा नहीं करती। व्यावहारिक इंजन अक्सर प्रभाव की दृश्य गुणवत्ता, फ्रेम समय, उपलब्ध हार्डवेयर और कार्यान्वयन जटिलता के बीच संतुलन बनाते हैं। पुस्तक इन तकनीकों को रेंडरिंग इंजन के विकास क्रम में रखती है, जो इसका प्रमुख अंतर है। पाठक केवल किसी सुविधा को चालू करने की प्रक्रिया नहीं सीखता बल्कि यह समझने की दिशा पाता है कि उन्नत फीचर मौजूदा पाइपलाइन, संसाधन प्रबंधन और प्रदर्शन बजट को कैसे प्रभावित करते हैं। इसीलिए यह भाग उन ग्राफिक्स इंजीनियरों के लिए उपयोगी है जो उद्योग में प्रचलित आधुनिक तकनीकों की बुनियादी कार्यान्वयन समझ विकसित करना चाहते हैं। निष्कर्ष में, मास्टरिंग ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग विद वल्कन उन डेवलपरों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास प्रोग्रामिंग और वल्कन की मूल अवधारणाओं का आधार है और जो अब एक वास्तविक रेंडरिंग इंजन की संरचना समझना चाहते हैं। खेल इंजन प्रोग्रामर, तकनीकी कलाकारों के साथ काम करने वाले ग्राफिक्स डेवलपर, सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन इंजीनियर तथा प्रदर्शन केंद्रित रियल टाइम अनुप्रयोग बनाने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल नए पाठक को पहले वल्कन की स्थापना, स्वैपचेन, कमांड बफर और शेडर की प्राथमिक समझ बनानी पड़ सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह एपीआई के अलग अलग फीचर सीखने और उन्हें एक संगठित इंजन में जोड़ने के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। पाइपलाइन लेआउट, संसाधन बाधाएं और जीपीयू संचालित कार्यप्रवाह जैसे विषयों को साथ देखने से पाठक प्रदर्शन, डेटा प्रवाह और शुद्धता के संबंध को बेहतर समझ सकता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें वल्कन के आरंभिक उपयोग, छोटे नमूनों या अलग अलग रेसिपी पर केंद्रित रहती है। यह पुस्तक अपने प्रोजेक्ट उन्मुख दायरे और आधुनिक रेंडरर की ओर क्रमिक प्रगति के कारण अलग पहचान बनाती है। मेष शेडर और वास्तविक समय रे ट्रेसिंग का समावेश इसे केवल आधारभूत परिचय से आगे ले जाता है। फिर भी इसकी वास्तविक ताकत किसी एक तकनीक का संपूर्ण अंतिम उत्तर देने में नहीं बल्कि पाठक को ऐसा वास्तुशिल्प ढांचा देने में है जिसमें नई जीपीयू क्षमताओं को विवेकपूर्ण ढंग से अपनाया जा सके। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्को कास्टोरिना, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।